लुका की मार्फत इंजील बाब 7। ये सब कुछ लोगों को सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम चला गया। वहां 100 फौजियों पर मुकर्रर एक अफसर रहता था। उन दिनों में उसका एक गुलाम जो उसे बहुत अजीज था बीमार पड़ गया। अब वो मरने को था। चूंकि अफसर ने ईसा के बारे में सुना था, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ बुजुर्ग ये दरखास्त करने के लिए उसके पास भेज दिए कि वो आकर गुलाम को शिफा दे। वो ईसा के पास पहुंचकर बड़े जोर से इल्तिजा करने लगे, ये आदमी इस लायक है कि आप उसकी दरखास्त पूरी करें, क्योंकि वो हमारी कौम से प्यार करता है, यहां तक कि उसने हमारे लिए इबादत खाने भी तामीर करवा दिया है। चुनांचे ईसा उनके साथ चल पड़ा, लेकिन जब वो घर के करीब पहुंच गया तो अफसर ने अपने कुछ दोस्त ये कहकर उसके पास भेज दिए कि खुदावंद मेरे घर में आने की तकलीफ न करें, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं, इसलिए मैंने खुद को आपके पास आने के लायक भी न समझा, बस वहीं से कह दें तो मेरा गुलाम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मुझे खुद आला अफसरों के हुक्म पर चलना पड़ता है और मेरे मातहत भी फौजी हैं। एक को कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे को आ तो वो आता है। इसी तरह मैं अपने नौकर को हुक्म देता हूं, ये कर तो वो करता है। ये सुनकर ईसा नहायत हैरान हुआ। उसने मुड़कर अपने पीछे आने वाले हुजूम से कहा, मैं तुमको सच बताता हूं, मैंने इसराइल में भी इस किस्म का ईमान नहीं पाया। जब अफसर का पैगाम पहुंचाने वाले घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गुलाम की सेहत बहाल हो चुकी है। कुछ देर के बाद ईसा अपने शागिर्दों के साथ नाइन शहर के लिए रवाना हुआ। एक बड़ा हुजूम भी साथ चल रहा था। जब वो शहर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक जनाजा निकला जो नौजवान फौत हुआ था। उसकी माँ बेवा थी और वो उसका इकलौता बेटा था। माँ के साथ शहर के बहुत से लोग चल रहे थे। उसे देखकर खुदावंद को उस पर बड़ा तरस आया। उसने उससे कहा, मत रो। फिर वो जनाजा के पास गया और उसे छुआ। उसे उठाने वाले रुक गए तो ईसा ने कहा, ए नौजवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसे उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। यह देखकर तमाम लोगों पर खौफतारी हो गया और वो अल्लाह की तमजीद करके कहने लगे, हमारे दरमियान एक बड़ा नबी बरपा हुआ है। अल्लाह ने अपनी कौम पर नजर की है और ईसा के बारे में ये खबर पूरे यहूदिया और इर्द गिर्द के इलाके में फैल गई। याहिया को भी अपने शागिर्दों की मार्फत इन तमाम वाकयात के बारे में पता चला। इस पर उसने दो शागिर्दों को बुलाकर उन्हें ये पूछने के लिए खुदावंद के पास भेजा, क्या आप वही हैं जिसे आना है या हम किसी और के इंतजार में रहें? चुनांचे ये शागिर्द ईसा के पास पहुंचकर कहने लगे, यहिया बपतिस्मा देने वाले ने हमें ये पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप वही हैं जिसे आना है या हम किसी और का इंतजार करें? ईसा ने उसी वक्त बहुत से लोगों को शिफा दी थी जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों, मुसीबतों और बदरूहों की गिरफ्त में थे। अंधों की आंखें भी बहाल हो गई थी। इसलिए उसने जवाब में यहिया के कासिदों से कहा, यहिया के पास वापस जाकर उसे सब कुछ बता देना जो तुमने देखा और सुना है। अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ियों को पाक साफ किया जाता है, बहरे सुनते हैं, मुर्दों को जिंदा किया जाता है और गरीबों को अल्लाह की खुशखबरी सुनाई जाती है। यहिया को बताओ, मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर खाकर बरगश्ता नहीं होता। यहिया के ये कासिद चले गए तो ईसा हुजूम से यहिया के बारे में बात करने लगा, तुम रेगिस्तान में क्या देखने गए थे? एक सरकंडा जो हवा के हर झोंके से हिलता है? बेशक नहीं, या क्या वहां जाकर ऐसे आदमी की तवक्को कर रहे थे जो नफीस और मुलायम लिबास पहने हुए है? नहीं, जो शानदार कपड़े पहनते और ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारते हैं वो शाही महलों में पाए जाते हैं। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? एक नबी को? बिल्कुल सही, बल्कि मैं तुमको बताता हूँ कि वो नबी से भी बड़ा है। उसी के बारे में कलामे मुकद्दस में लिखा है, देख मैं अपने पैगंबर को तेरे आगे आगे भेज देता हूँ जो तेरे सामने रास्ता तैयार करेगा। मैं तुमको बताता हूँ कि इस दुनिया में पैदा होने वाला कोई भी शख्स यहिया से बड़ा नहीं है, तो भी अल्लाह की बादशाही में दाखिल होने वाला सबसे छोटा शख्स उससे बड़ा है। बात ये थी कि तमाम कौम बमशोल टैक्स लेने वालों से यहिया का पैगाम सुनकर अल्लाह का इंसाफ मान लिया और यहिया से बपतिस्मा लिया। सिर्फ फरीसी और शरीयत के उलमा अपने बारे में अल्लाह की मर्जी को रद्द करके यहिया का बपतिस्मा लेने से इनकार किया था। यहिया ने बात जारी रखी, चुनांचे मैं इस नस्ल के लोगों को किससे तशबीह दूं? वो किससे मुताबिकत रखते हैं? वो उन बच्चों की मानिंद हैं जो बाजार में बैठे खेल रहे हैं। उनमें से कुछ ऊंची आवाज से दूसरे बच्चों से शिकायत कर रहे हैं, हमने बांसुरी बजाई तो तुम न नाचे, फिर हमने नौहा के गीत गाए लेकिन तुम न रोए। देखो यहिया बपतिस्मा देने वाला आया और न रोटी खाई न मैं पी, यह देखकर तुम कहते हो कि उसमें बदरू है। फिर इब्ने आदम खाता और पीता हुआ आया, अब तुम कहते हो देखो ये कैसा पेटू और शराबी है, और वो टैक्स लेने वालों और गुनहगारों का दोस्त भी है। लेकिन हिकमत अपने तमाम बच्चों से ही सही साबित हुई है। एक फरीसी ने ईसा को खाना खाने की दावत दी, ईसा उसके घर जाकर खाना खाने के लिए बैठ गया। उस शहर में एक बच्चलन औरत रहती थी। जब उसे पता चला कि ईसा उस फरीसी के घर में खाना खा रहा है तो वो अत्रदान में बेशकीमत अत्र लाकर पीछे से उसके पांव के पास खड़ी हो गई। वो रो पड़ी और उसके आंसू टपक टपक कर ईसा के पांव को तर करने लगे। फिर उसने उसके पांव को अपने बालों से पोंछकर उन्हें चूमा और उन पर अत्र डाला। जब ईसा के फरीसी मेजबान ने ये देखा तो उसने दिल में कहा, अगर ये आदमी नबी होता तो उसे मालूम होता कि ये किस किस्म की औरत है जो उसे छू रही है, कि ये गुनहगार है। ईसा ने इन ख्यालात के जवाब में उससे कहा, शमौन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा, जी उस्ताद बताएं। ईसा ने कहा, एक साहूकार के दो कर्जदार थे, एक को उसने चांदी के 500 सिक्के दिए थे और दूसरे को 50 सिक्के, लेकिन दोनों अपना कर्ज अदा न कर सके। ये देखकर उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। अब मुझे बता, दोनों कर्जदारों में से कौन उसे ज्यादा अजीज रखेगा? शमौन ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में वो जिसे वो ज्यादा माफ किया। ईसा ने कहा, तूने ठीक अंदाजा लगाया है। और औरत की तरफ मुड़कर उसने शमौन से बात जारी रखी, क्या तू इस औरत को देखता है? जब मैं इस घर में आया तो तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी न दिया, लेकिन इसने मेरे पांव को अपने आंसुओं से तर करके अपने बालों से पोंछकर खुश कर दिया है। तूने मुझे बोसा न दिया, लेकिन ये मेरे अंदर आने से लेकर अब तक मेरे पांव को चूमने से बाज नहीं रही। तूने मेरे सर पर जैतून का तेल न डाला, लेकिन इसने मेरे पांव पर अत्र डाला। इसलिए मैं तुझे बताता हूँ कि इसके गुनाहों को गो वो बहुत हैं माफ कर दिया गया है, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत का इजहार किया है, लेकिन जिसे कम माफ किया गया वो कम मोहब्बत रखता है। फिर ईसा ने औरत से कहा, तेरे गुनाहों को माफ कर दिया गया है। ये सुनकर जो साथ बैठे थे आपस में कहने लगे, ये किस किस्म का शख्स है जो गुनाहों को भी माफ करता है? लेकिन ईसा ने खातून से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामती से चली जा।